कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हे गोपाल हे गोपाल हे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलो 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 पुकारो पुकारो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे राधे हे गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधे राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव साई गौर प्रेमानंदे श्री गौरांग महाप्रभु की जय श्री गोपाल जी महाराज की जय श्री नाथ जी की जय श्री गुलाल कुंड की जय श्री गांठोली ग्राम की जय श्री गिरिराज सच गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका गांठोली ग्राम में स्वागत है। गांठोली, गांठ गांठोली और दूसरा नाम गुलाल कुंड जो आपके पीछे। ये बहुत रमणीय स्थान है, तो आपको ये समझ में आया होगा ना अभी देखते हुए। बहुत रमणीय कहने, बहुत सुंदर रमणीय कहने, आंखों के लिए, त्वचा के लिए, कानों के लिए, हर तरह से परम शांति और आनंद दोनों से ये स्थान भरा हुआ है। क्योंकि कलयुग में धर्म के क्षेत्रों में भी फिर व्यापार आ जाता है, बहुत सारा ऐसी चीजें आ जाती हैं, लोगों को दान मांगना, लोगों को सताना, फंसाना, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े गाड़ियां, ये वो सब, उससे क्या धाम की दिव्यता में बहुत सारा वो भौतिकतावादी दोष आ जाता है, कंटामिनेशन। इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अभी कोई बड़ा आश्रम, बड़ा पंडागिरी नहीं हो रहा है, उससे आपको फिर वो शांति से बैठकर आप अपने इंद्रियों के माध्यम से धाम का अनुभव कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से पंछियों की आवाज सुन सकते हैं। अभी वातावरण भी बहुत प्रसन्न है, ठंडी नहीं, ज्यादा कम, गर्म भी नहीं, धूप नहीं, पर आप अभी थोड़ा खा पी के भी आए हो, अगर रात को सोकर भी आए हो, तो हर तरह से श्रेष्ठ वातावरण है। तो श्रेष्ठ वातावरण होने से क्या होता है? श्रेष्ठ वातावरण से आप इंद्रिय भोग भी ले सकते हैं, सब कुछ बेस्ट है, अभी लेट्स एंजॉय, है ना। हो सकता है लोग आएंगे, दारू की बोतल खोलेंगे और कुछ खोलेंगे, बैठ जाएंगे, इतना शांत वातावरण, जंगल में आकर बैठेंगे। लेकिन बेस्ट वातावरण केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया जाता है। इस दुनिया में जो भी वातावरण है ना, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को भगवान की भक्ति का लाभ मिले, क्योंकि वो कप वही है जो आपको दिया गया है। उसमें आप शराब भी पी सकते हो, गाय का दूध भी पी सकते हो, या अमृत पी सकते हो। तो कुछ लोग पात्र को देख के बहुत मोहित हो जाते हैं, वाह शराब पीने के लिए बेस्ट है, और कुछ को पात्र को देख के दूध पीने का भाव बनता है। तो पात्र में कुछ खराबी नहीं है, हमारी भावना में खराबी। इसलिए हम लोगों को जैसे ही मन की शांति प्राप्त हो जाएगी ना, जब भी तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, एंजॉयमेंट की बात सोचना नहीं चाहिए। चलो आज सब कुछ ठीक है, चलो एंजॉय करके आते हैं। जैसे ही आपको लगेगा आपका कुछ अच्छा है, आज झगड़ा नहीं हुआ, भोजन भी ठीक टाइम पे मिला, नींद भी पूरी हो गई है, सर भी इधर दुख रहा है, तो परेशानी भी नहीं, घर में समस्या नहीं है, कोई जलती हुई समस्या नहीं है, तुरंत हमारा मन भगवान की ओर जाना चाहिए। उसी को मानव जीवन कहते हैं। अगर ऐसा है तो आप मानव हो, सॉरी टू से, बुरा नहीं मानना, कहते ना बुरा ना मानो होली है, ऐसे बुरा नहीं मानना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जानवर हैं। देखो दिन भर क्या करते हैं, भोजन ढूंढता है, पेट भर गया तो नर मादी को ढूंढता है, मादी नर को ढूंढती है, कोई आ गया तो सुरक्षा करने के लिए भाग जाएगी किधर, और थक गया तो सो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, सारे काम करेगा वो। मनुष्य चार के ऊपर भी कुछ बहुत सारे काम करता है और कर सकता है, तो करने की सुविधा भगवान ने देके रखी है उसको। यहाँ पर धाम में भगवान के कृपा से ऐसा वातावरण बना रखा हुआ है, स्थितियां ऐसे रखी हुई है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते। कुछ लोग कहते भी है आप कैसे बंबई में भक्ति करते, ऐसा पूछते हैं, वहां भी भक्ति हो सकती है क्या, ऐसे पूछते हैं। भक्ति तो धाम में ही होती है, तो बात भी सही है, इतना अनुकूल वातावरण है, फिर भी लोग नशा करने में और जुआ खेलने में और झगड़ा करने में और डकैती करने में लगे हुए हैं, लोगों को बहुत त्रस्त करने के लिए बैठे हैं। लेकिन धाम का वातावरण जो है हमको, आपको जो मिल रहा है कुछ समय के लिए मिल रहा है शायद, वो केवल भक्ति करने के लिए। माइंड एकदम फोकस होना चाहिए, बाकी समस्या है वो चलती रहती है जाए लाइफ में, वो कुछ बदलती नहीं है। जो कर्म लेके आए वो चलते रहेंगे, आप कुछ भी करो, माथा फोड़ो, कुछ भी करो, चलता रहेगा वो। उसके बीच में आपको करना है, वो नहीं बोलना है क्या अब देखो ऐसा बच्चा बीमार है, देखो अभी मेरी सासू बीमार है, देखो मैं बीमार हूँ, कैसे करूँ, वो तो क्या है, वो चलते रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, वो कहाँ खत्म होगा, किसको, प्रधानमंत्री को भी लागू है वो, हमको भी आपको लागू है, किसी को लागू नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी सबको विनती है कि ये जो धाम वास आपको मिल रहा है परमानेंट, आपको मिल रहा है कुछ समय के लिए, हमको कुछ समय के लिए मिल रहा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, वेरी सीरियसली वी शुड टेक, क्योंकि इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो माया बैठी आपके लिए, उधर पहुंचते ही आपको निकटस्थ माया तारे झपटे या धरे, ऐसा झपट के पकड़ लेगी आपको, आपको बहुत सारे बहाने मिलेंगे नहीं करने के लिए, देखो ऐसा है वैसा है, देखो ट्रेन नहीं पकड़ना, अभी ट्रेन पकड़ूंगी जब करूँ। प्रभुपाद जी सुंदर बात बोल रहे थे एक दो दिन पहले, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत प्रगत देश है, इंग्लैंड बहुत प्रगत देश है, यूरोप बहुत प्रगत देश है, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, जिस समय पर सुबह अंधेरे में उठकर भगवान का भजन करना चाहिए उस समय वो ट्रेन पकड़ते हैं और काम करने को चले जाते हैं। बोले क्या प्रगति है, प्रगति मतलब क्या, आपके पास बहुत टाइम है, समृद्धि मतलब प्रगति है, मतलब प्रगत देश मतलब क्या, What is the meaning of advanced country? It means there is lot of wealth and less work is there. Samruddhi ka matlab kya hai? Aapke paas bahut samay hai. Lekin samruddhi ka matlab ye nahi ki jahan jis samay bhajan karna chahiye us samay aap log train mein baithkar kaam pe ja rahe ho. Ye samruddhi ka lakshan nahi hai. Isliye main kehta hu, main jata na udhar unka ka gaya tha us din. Udhar kabhi bahut sare kaam ja ke aaye. Main aise baithe aaram se. कोई टेंशन नहीं, बोला क्या हुआ अभी, बोला अभी वो बो दिया है, एक दिन में जाके पानी दे के आना है बस, बाकी दिन भजन करना है। हाँ हाँ भजन करना है, बिल्कुल अच्छा है, भजन करते हैं हम लोग, कुछ समय काम होता है तो बिजी होता है, फुल डे बिजी रहता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद में फिर भगवान को छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, फिर कटाई के समय फिर बिजी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय फ्री रहते हैं और भगवान बाकी सब काम कर रहे हैं, वर्षा देना और जो भी कुछ फसल उगाना पकाना उसको भगवान कर रहे हैं। और प्रगत देशों में क्या कर रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, इधर कंप्यूटर देख रहे हैं, दिन 12 घंटा काम कर रहे हैं, 15 घंटा काम कर रहे हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट पॉइंट था वो, कि प्रगत देश का लक्षण ये नहीं है कि आप सुबह 5 से लेकर रात को 12 बजे तक काम करते हो, ये प्रगति का लक्षण नहीं है। प्रगति का लक्षण है कि आपके पास पर्याप्त साधन है पेट भरने के लिए और बहुत समय है और आप भजन करते हो भगवान का, शास्त्र पढ़ते हो, भगवान का भक्तों का संग करते हो, उसको समृद्धि कहते हैं। ये समृद्धि नहीं है तो समृद्धि से कुछ नहीं होता है, मन की शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। यस और नो, मोर द मनी मोर द टेंशन मोर द फ्रस्ट्रेशन मोर द झगड़ा मोर फाइट्स मोर मनी मोर फाइट्स मोर कोर्ट केसेस मोर कॉन्फ्लिक्ट्स मोर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिलेटिव्स हु आर वेरी क्लोज Relatives. मेरे आपको विनती है, अभी एक संघ भी कुछ दिन अभी छूट जाएगा ना, आज खत्म हो जाएगा, फिर अपने अपने काम में सब लग जाएंगे, लेकिन इसको गंभीरता से लेना और भगवान को पुकारना, उनको पुकारने के लिए जिंदगी दी है। भगवान को केवल मनुष्य पुकार सकता है और कोई नहीं पुकार सकता, देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, देवता भी मनुष्य जितनी भक्ति कर सकते हैं उतना नहीं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कर सकते हैं, इतनी वेल्थ है वहां पर, इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतना आनंद है, इतना सुख है, उसके बीच में भगवान की याद नहीं आती। यहीं पर भगवान की याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट सिचुएशन है। सिचुएशन इज परफेक्ट हियर टू थिंक ऑफ गॉड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग मंजूर हैं मेरी बात पर? एवरीबडी एग्रीबल टू माई स्टेटमेंट? टेक इट सीरियसली, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो खाली वो गवर्नमेंट के लिए नहीं बोलना है आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके लिए बोलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना। दोबारा कौन कभी आएंगे धाम में, कभी भगवान की प्रार्थना प्रेरणा होगी, हु नोज, नोबडी नोज। इसलिए सुबह शीघ्रम, अच्छा काम भगवान के नाम का तुरंत तुरंत ही पकड़ना चाहिए। तो कल हम जो कथा कर रहे थे गोवर्धन की, उसका पार्ट टू बताएंगे, आज की इधर की कथा बताने के पहले। तो जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो पहले बताया ना मैंने कि सब लोगों को अंदर बुलाया, फिर गोवर्धन विस्तार हो गया सबको सम्मिलित करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में चलो देखते रहे, अरे इतना छोटा लाला इतना बड़ा परोस उठाए रखो है, देख रहे हैं, अरे बाप रे। तो मैया क्या सोच रही है? अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, माखन भी नहीं खाया, तभी नेक्स्ट माखन खा लो, भूख लग रही होगी, और एक हाथ में पकड़ के रखा है, दर्द हो गया तो चेंज करो उसको, वो हाथ को मालिश कर देती हूँ मैं, ये वात्सल्य है। तो वो फिर उसको माखन भी खिला रही है और बातें कर रहे हैं, बेचारा देखो कितना बड़ा उठा के रखा है, दर्द होता होगा उसको ऐसे वैसे। और बाद में क्या बोलती है अपने सखियों को बता रही है, बड़ी बड़ी बूढ़ी सखियों को, कह रही है कि अच्छा हुआ मैंने वो मेहनत किया ना, पद्मा गायों को, पद्मगंधा गायों को मैंने संभाला, उनको पद्मगंधा घास खिलाई, उसका दही बनाया, उसका मक्खन बनाया, उसका खिलाया अलग से, आज काम आया ना देखो, इतना बढ़िया मक्खन खिलाया, ताकत आ गई ना उठाने के लिए। ये मैया सोच रही, बड़ा आनंद आ रहा है उनको कि मैंने अच्छा किया काम, मतलब अलग से नहीं किया उस करने में, आज देखो उसका फल मिल रहा है ना, अभी इतने हैन मौके पे आज वो काम आया ना, इस तरह से मक्खन खिला रही उनको। तो सखा लोग उनको देख रहे हैं और हंस रहे हैं उनको देख, आप भी हंसो। क्यों हंस रहे हैं? भले मैया लोग बोल रहे हैं अच्छा है, उनके अपने खुशी के लिए अच्छा है वो, लेकिन वो सही नहीं है बात, हम जानते हैं उसका रहस्य क्या है। अरे जो रोज गौचरण करते समय हमने उनको कुश्ती खेल खेल कर हराया था, रोज रोज आसमान दिखाते थे उसको, मैं मधुमंगल सीदामा सब ऐसे बोल रहे थे, हम लोग ने इसको कितनी बार चितपट कराया है, वो हार हार के जो शक्ति प्राप्त किया ना उसकी वजह से आज उठा के रखा है उसने। क्योंकि हारने में शक्ति रखते ना, अभी ऐसा नहीं कि हारने में आप कुछ नहीं करते हो, अरे खाली ऐसे खड़े रहते हो फिर आके आपको हरा देते, नहीं आप भी लड़ते हो, जोर से लड़ते हो फिर हार जाते हो। तो हमने उस पर हावी होकर जो हराया उसमें जो बल प्राप्त किया वो आज काम आया, देखो तो भी अपने आप में खुश हो रहे हैं, देखो हमने कितना बढ़िया काम किया। फिर उनको देखो गोपियां हंस रही है, क्यों हंस रही है? बोले मैया को भी पता होना है, ग्वाल बालन को भी पता होना है, सही रहस्य क्या है। तो ये जो बोलते हैं ना ये बातें, तो ग्वाल बाल सुन लेते हैं, तो उनको ये देखते क्या हुआ, बोले आप लोगों को पता नहीं है सही कारण क्या है, बोले क्या सही कारण क्या है, आपको अगर पता है तो बता दो सही कारण क्या है, बोले सही कारण है कि ना माखन का कुछ लाभ है ना कुश्ती का लाभ है, शक्ति तो राधा रानी की ओर से प्राप्त हो रही है। बोले ये कैसे, वो तो वहां खड़ी है और यहाँ पर वो उठाए खड़े, बोले देखो उनकी नजर कहाँ है, तो देखते हैं वो तो ऐसा देख रहा है, अभी देखो नजर कहाँ पहुंच रही है, तो राधा रानी की ओर पहुंच रही है, राधा रानी भी उनको ऐसे ही देख रही है, बोले ये नजर से करंट जा रहा है और वहां से पावर मिल रही है, तो वो भी कैसे विश्वास करेंगे। तो कहेंगे बाद में बता देंगे आपको, समय आएगा तो प्रूव करेंगे इसको। इस तरह से गोवर्धन के नीचे तले बहुत आनंद आया, बहुत लोगों ने आनंद लिया। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि भाई 7 दिन 7 रात उधर कोई किचन नहीं बनाया था उन्होंने, है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हुई अंदर है अभी खाना तो है ना, नहीं कुछ नहीं उधर कुछ नहीं था, सोने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, पीने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी, निद्रा की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी व्यवस्था। तो 7 दिन और 7 रात ये कैसे रहे? ऐसा नहीं कि कुछ लोग सो गए, जो गोद में बच्चा सोता है ना वैसे सो गए, ऐसा नहीं, सब लोग जग रहे थे उसमें। तो दो प्रश्न है कि जगे कैसे रहे और जीवित कैसे रहे, दो प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये है कि भगवान के 64 गुण है, 64 कला बोल सकते हैं उसको, क्वालिटीज। तो उसके अंदर चार जो लास्ट वाले है ना, 61, 62, 63 और 64, ये जो चार है ना, ये बहुत लोगों के पास है लेकिन कृष्ण के पास जैसा है और जितना है वो किसके पास नहीं। सब लोग मुरली बजाते हैं, ग्वाल बाल बजाते हैं, बलराम की बजाते हैं, सब बजाते हैं मुरली, लेकिन कृष्ण की मुरली जो है ना वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो वो चार गुण कौन से हैं? एक है वेणु माधुरी। भगवान जब वेणु बजाते ना तो कोई भी, सब लोग वेणु बजाना बंद कर देते हैं, सब बजा रहे हैं लेकिन वो जब बजाते हैं सब बंद हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। और जब भगवान वेणु बजाते हैं ना पंछी भी शब्द हो जाते हैं, एक लाइन से बैठते हैं विद्यार्थी की तरह और चित्रपट की तरह सुनते हैं उसको, मतलब दे बिकम लाइक अ पिक्चर, शब्द हो जाते हैं। फिर है लीला माधुरी, यानी जब लीला करते हैं ना तो ऐसी लीला कोई नहीं करता है, जैसे नरसिंह भगवान आए, खंभा फोड़ के आए, पेट फाड़ दिया, बहुत सारा किया, वरा भगवान आए उन्होंने और कुछ कला दिखाई अपनी, लेकिन जो कृष्ण ने किया ना कालिया के ऊपर नाच, वैसा कोई लीला कि भगवान ने किसी कभी किया नहीं आज तक। प्रभु रामचंद्र आए उन्होंने बड़ा युद्ध किया, बहुत सारा सुंदर लीला दिखाया, लेकिन कृष्ण ने जो लीला किया ना वो लीला कोई नहीं दिखा सकता है। जैसे जल के अंदर कूदे, उधर फाइटिंग किया, उधर से ऊपर आए, उधर सर पे नाच किया, गिरिराज को धारण कर दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? या माखन चोरी किया, नरसिंह भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, कभी सुना है आपने आज तक? वो नहीं हो सकता है, उनका भाव ही अलग है पूरा, क्रोध ऐश्वर्य बल उसका प्रदर्शन है उनके अंदर, करुणा भी है, दया भी है, प्रेम भी है, लेकिन अद्भुतता जो कृष्ण की लीला में है ना वो किधर भी नहीं। तो कृष्ण की लीला अद्भुत है बहुत। अभी क्या क्या बताएं आपको, अरे वरुण देव ने पिताजी को अरेस्ट कर लिया तो ये वरुण के पास गए, जो सत्कार हुआ उनका, पापा को लेके आए वहां से, ऐसा अद्भुत लीला है। एकादशी का उपवास किया, फिर आदमी का अजगर आया, उससे पिताजी को बचाया, ऐसे एक अद्भुत अद्भुत कार्य होते। तो लीला माधुरी, और तीसरा क्या है? प्रेम माधुरी। इनका जो प्रेम है ना उसका कोई उसका मुकाबला नहीं, उसमें कुछ नहीं, प्रेम के अंदर ऐश्वर्य कुछ नहीं आता है। वो तो सीधा सुदामा आते हैं तो सब भूल जाते हैं कि कोई फटीचर फटा हुआ ब्राह्मण आया है, गरीब एकदम कुपोषित लगता है, माल नरिष्ट, लेकिन उसको गले लगा रहे हैं सबके सामने, कोई संकोच नहीं है, लोग बोलेंगे द्वारकाधीश है, अरे कोई गले लगा रहे हैं इतने गरीब आदमी को, सब धूल से बंधा हुआ है वो पूरा, ऐसा नहीं है। प्रेम ऐसा है ना कि कोई बीच में आ नहीं सकता है, उसकी राज का पोजीशन या द्वारकाधीश होने का स्थिति या और कोई कुछ भी चीज बीच में नहीं आ सकती है कि मैं 16,108 पत्नियों का पति हूं और वो क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं है। नो टैबू, नो बैरिकेड, ओनली लव, ओशियनिक लव। और लास्ट है रूप माधुरी, यानी उनका जो रूप है ना वो इतना सुंदर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। प्रभु रामचंद्र भी सुंदर है, नरसिंह भगवान भी सुंदर थे, ऐसा नहीं सुंदर नहीं थे, वराह भगवान लगता अरे सुवर कैसे होंगे सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर थे वो। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य जो है ना, उनका एक नाम है अदृष्टा, उसका मतलब क्या है, जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है। अभी गोपियां रोज देख रही हैं फिर भी उन्होंने देखा नहीं है, मतलब आज जो दिखा रहा है, दर्शन दिखा रहे ना, वो पहले कभी नहीं दिखाया उन्होंने, इसका मतलब है अदृष्टा। यानी आज जो दर्शन में सौंदर्य है वो कल नहीं था, वो आज ही दिखाई पड़ेगा, और आज कल जो दिखाई देंगे वो भी आप पहली बार देखेंगे, मतलब नित्य नवायमान है उनका सौंदर्य, कभी भी पुराना नहीं होता है कि भाई वो थर्सडे वाला आज भी थर्सडे को ही है ना, इसलिए सेम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन हमारे जो मूर्ति है ना मंदिर की, आप उनको सेम श्रृंगार करो, सेम कपड़े पहनो, सेम गहने पहनो, वो डिफरेंट दिखेंगे आपको। तो साक्षात भगवान है ना वो कोई मूर्ति नहीं है पत्थर की। मूर्ति में पत्थर की भावना रखना नारकीय भाव है, मतलब हेलिश मेंटेलिटी, अगर आप मूर्ति को पत्थर समझते हो। तो वो रूप माधुरी क्षण क्षण में नहीं थी, मतलब तो अभी देख रहे ना, एक मिनट के बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, सात दिन सात रात लगातार नया नया नया। पहले तो ऐसे खड़े थे, देखो पहले तो खुद ही सुंदर सुंदर सुंदरता के मूर्ति है, परम सौंदर्य है उनके अंदर, एक तो सुंदर है ही, ऊपर से गिरिराज को धारण किया हुआ है, वो तो कभी दिखाया नहीं था पहले, अद्भुत दृश्य है वो दर्शन। ऊपर से मुरली निकालते हैं और बजाना शुरू करते हैं, सब लोग बोलते हैं अरे मत बजाओ मत बजाओ, अरे मत बजाओ। बोले क्यों उन्हें बजाओ? बोले मैंने हमने देखा है कि जब आप मुरली बजाते हो तभी पत्थर पिघल जाते हैं, अब ये जो पकड़ के रखा है वो पिघल गया तो तो क्या होगा? सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि सब लोग ने देखा है, जहां यशोदा मैया ने खुद देखा है, पूर्णमासी ने बताया था उसको कि तुम अपने बालक को जूता मत पहनाना क्योंकि इसका चरण कमल जहां पड़ता है वहां चैतन्य और जीवन उत्पन्न होता है। तो यशोदा मैया ने जाके पीछा करके देखा है इनका चरण रखने के बाद उस भूमि में क्या हो रहा है, इसका दर्शन किया उसने। फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं मान गई कि भाई उसको चप्पल नहीं पहना, लेकिन जो पत्थर पे जाएगा, कंकड़ पे जाएगा, तो पत्थर कितना सख्त होता है, इसके पैर तो मुलायम होते हैं, मोम मक्खन किसी भी अधिक मुलायम होते हैं, तो पत्थर का कैसा मैं उसको भेजूं बिना चप्पल के? तो पूर्णमासी कहते हैं डरो मत, वो जब पत्थर पे मारो रखता है ना तो पत्थर पिघल जाता है। दो कारण से पिघलता है, एक उनका चरण का स्पर्श हुआ इसलिए आनंद से पिघलता है, और एक उनके मुलायम चरणों को कष्ट नहीं होना चाहिए इसलिए पिघल जाता है। दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। तो जानते थे कि इनका मुरली बजती है, देखो कितनी बार ऐसी कथा है, देखो काम्य वन में चरण पहाड़ी पे खड़े होकर मुरली बजाई तो ऐसे अंदर जाने लगे, पत्थर पिघलने लगा ऐसे, और बंद किया बजाने का तो वो वहीं पर रुक गया, तो चरण चिन्ह बन गए उसके। चरण चिन्ह बनते कैसे हैं? उसको कार्विंग नहीं करते उसके, भगवान मुरली बजाते हैं चरण चिन्ह बन जाते हैं। तो सब लोग मना करते हैं मत बजाओ मत बजाओ, लोगों को डर रहता है कि गिर गया तो। एक तो दो का एक होगा कि जब ये बजाता है ना तो ये भी भाव विभोर हो जाता है, तो कांपने लगेगा तो ये भी कांपने लगेगा, तो गिर जाएगा तो, या तो पिघल जाएगा तो सब हमारे ऊपर वर्षा होगी, हम भय जाएंगे सब लोग। फिर भी भगवान ने उसको उठाया और बजाना शुरू किया और सब लोग गोवर्धन के नीचे भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए सब भूल गए। उसमें भी ये कारण है कि भूख नहीं लगी प्यास नहीं लगी, इतना आत्मा के सर पर भाव विभोर हो गए कि उनको कुछ भूख प्यास नींद नींद कुछ का स्पर्श भी नहीं हुआ दूर से भी। तो इतना अद्भुत दर्शन ब्रज लीला में दोबारा नहीं हुआ, दोबारा भी चलो अभी ये संडे को हो गया अगले संडे को फिर दिखाओ, ऐसा नहीं हुआ, एक ही बार हुआ वो सात दिन, तृतीया से नवमी तक, कार्तिक महीने के नहीं अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के तृतीया से कृष्ण पक्ष के नवमी तक सात दिन धारण किया उनको, और उन सात दिनों में सब लोग वो अद्भुत दर्शन एक अमृत की तरह नेत्रों से पी रहे थे लगातार, उसी में सब संतुष्टि थी, कोई भूख का परिणाम नहीं, ये कारण है उसका। उनकी रूप माधुरी का जो अमृत था वो सभी पक्षी गाय ग्वाल बाल गोपियां मैया बाबा सब लोग उसको पी रहे थे, इसलिए 700 दिन भी लीला चलती तो भी वो खड़े रहते क्योंकि शरीर के स्तर पर कोई था ही नहीं उसके अंदर, सब दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर बीच में बड़े ग्वाल बाल बोले कि अरे बाला लाला को हाथ दुख रहा होगा तो हम लोग भी डंडा लेके सपोर्ट करेंगे, कितना देर पकड़ेगा बेचारा लाला, तो सब लोग ऐसा पकड़ने लगे, तो सब लोगों को लगा कि हाँ वास्तव में हम ही पकड़ रहे, देखो हमारे इतने डंडे हैं करोड़ों डंडे, इसके वजह से पहाड़ खड़ा है, तो भगवान ने उसको हिला दिया थोड़ा सा, तो सब लोग ऐसे ऐसे हो गए थे समझ गया। तो उसमें भी एक अद्भुत लीला हुई, लास्ट में जो लीला हुई मैं बचकल बताया ना सातवां दिन स्व आश्रय, वो अलग है, वो तो ग्वाल बाल कह रहे थे कि तुम निकलो हम पकड़ते उसको, तुम निकल जाओ, तो आधा भार डाल दिया उनके ऊपर, वो लास्ट दिन का है, लेकिन बीच में बाबा लोग कह रहे थे कि हम पकड़ेंगे उसको, तो भगवान ने क्या कहना उसको थोड़ा झुका दिया ऐसे, तो झुका क्यों दिया? उसने दो काम किए, उन्होंने उनको दिखाया कि तुमने पकड़ रहे हो, मैं पकड़ रहा हूँ। और उसकी कथा आती है कि देवी पार्वती ने त्रैमासिक व्रत किया ना, और उनका व्रत पूर्ण हो गया, फिर भोजन करने का समय आया ना सबको, तो उसमें अगस्त्य मुनि को भी बुलाया। अभी अगस्त्य जब आए ना, तो पार्वती को भी टेंशन आया कि मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, सबको भर भर के खिलाते हुए, अगस्त्य मुनि को खिलाना कोई साधारण बात नहीं है, वो तो पर्वत के समान खाना खाते थे। जैसे वो ऐसा था, उनको पंगत में लास्ट बिठाते थे। लास्ट मतलब क्या? आप पूरी लेके आए ना, तो आपको एक दो 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 ऐसे करते हैं, वहां जाएंगे तो पूरा ऐसे चावल लेके आएंगे तो आपको सौ देंगे, और पूरा ऐसे करेंगे, ऐसे पर्वत चावल के, सब्जी के, स्वीट के, ऐसे खाते थे वो। तो कृष्ण कृष्ण भी आए उस पंगत में, तो उसमें उन्होंने कृष्ण को देखते ही पार्वती जी इनके पास गई समस्या लेकर के, देखो ऐसा मेरी समस्या है कि इनका अपराध नहीं होना चाहिए, इनका अपराध हो गया तो मेरा पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा सबको संतुष्टि होना चाहिए, सबको दक्षिणा मिलनी चाहिए, सब लोग आशीर्वाद देना चाहिए, एक भी ब्राह्मण अगर क्रोधित हो गया तो मेरा पूरा व्रत जो है ना वो अपूर्ण हो जाएगा। तो कृष्ण ने कहा डोंट वरी, मैं इसका इलाज करता हूँ। तो लास्ट में अगस्त्य मुनि बैठ गए, सेकेंड लास्ट कृष्ण बैठ गए, सबको दिया जा रहा है भोजन, और अचानक ना इनको लगने लगा कि बीच जो बनाया गया है वो समाप्त हो रहा है, और ये तो लगे हैं पूरी तरह से, एकदम एकदम प्रेम से लगे हुए हैं, हा? कोई मतलब एकदम मग्न है पूरे, एकदम पहाड़ों के बीच में चल रहा है उनका काम। तो अचानक कृष्ण भगवान उठ जाते हैं, जैसे कि हो गया महापूरण। अभी आप लोगों को पता है कि मालूम नहीं, लेकिन इस समय बताना जरूरी है, वैष्णव लोग जब भोजन करते हैं ना, सुसंस्कृत लोग, कल्चर्ड पीपल व्हेन दे ईट, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा ही जानवरों के नहीं खा सकते हम लोग, पंगत में बैठे हैं, और अभी सब जितना आइटम जितने हैं जितने सब दिए जाएंगे ना, उसके बाद शुरू करना है। और शुरू कब करना है? सारे आइटम देने के बाद में जो सीनियर आदमी है, सबसे सीनियर मोस्ट, वो शुरू करेगा, उसको देखकर बाकी शुरू करेंगे। और समाप्त होने के समय भी आपका हो गया होगा, आप थोड़े से खाने वाले हो, बहुत अधिक खा रहे हैं, तो आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है। जब सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो समाप्त करेगा, वो बोलेगा जय जय श्री राधे या जय श्री राम जय राम, जो भी कुछ है घोषणा करेगा ना, मतलब हो गया, अभी वो उठेगा तब बाकी को उठना है, तब तक आपको बैठना है उधर ही, कुछ नहीं करना है, बैठे रहो ऐसे हाथ के हाथ रखकर, जब इशारा होगा तब उठ के चलना है। और समझो कोई उठ के चल गया ना, तो जो खा रहे उनका अपमान हो जाता है, मतलब ये एकदम रेस्टलेस, अरे तुम जाए हो तो फिर वो आधी पंगत खाली आधी बैठे, कुछ आगे आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है, इट्स अ वेरी इंसल्टिंग सिचुएशन टू गेट अप एंड स्टार्ट वॉशिंग। बट कृष्ण उठ गए, तो अगस्त्य मुनि बोले अरे मैं तो अभी बीच का पानी भी नहीं पिया अभी तक, इंटरवल इंटरवल था ना बीच में, अभी इंटरवल का पानी भी नहीं पिया है। तो बोलेंगे भगवान ने बोला कि मैं आपको खूब पानी पिलाऊं, चिंता मत करना। तो उस समय जब झुकाया ना उसको, तो अगस्त्य मुनि ने वो पानी पी लिया, प्यास बुझाई अपनी, ऐसी भी कथा आती। तो बहुत सारी चीजें हुई, मतलब जो आनंद ब्रज में, तो आनंद आनंद है, हर समय आनंद ही आनंद है, हर प्रकार का आनंद है, गौ बाल बालों का, माता पिताओं का, गोपियों का, गायों का, अनंत प्रकार का आनंद वहां पर हमेशा बरसते रहता है। लेकिन ये जो आनंद बरसा ना सात दिन सात रात, वो कभी दोबारा नहीं हुआ, इतने प्रकार का आनंद एक साथ, सब प्रकार का, उनका सबका आदान प्रदान, इससे बात करे उससे बात करे, सबका आदान प्रदान हो रहा है, ये सारा आदान प्रदान जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं हुआ। वह सारे रस के लोग एकत्र कभी वापस आए नहीं, इंद्र की लीला में ही आए, गोवर्धन की लीला में। तो उसके बाद फिर रखा गया उनको। अच्छा, जब भी इंद्र आया ना, तो उसने वज्र फेंका, तो एक बीच में सुंदर बात हुई, संवर्तक बादल है ना, उनका पानी समाप्त हो गया, तो वे अभी क्या करेंगे वहां पर, तो वापस गए वो इंद्र को मिलने के लिए। पर उन्होंने इंद्र को बताया कि महाराज अभी क्या करें, बादल ही पानी खत्म हो गया, तो वो तो क्रोध में, अभी भी क्रोध में, वो तो कुछ मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्रोध के आवेश में, क्रोध ऐसी वस्तु है ना, क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती है, कितना भी बुद्धिमान रहेगा आदमी ना, तो क्रोध आएगा ना, तो वो ना हमारी भाषा में उसका दिमाग सटक जाता है, हाँ जगह से, वो बराबर सोच नहीं सकता है, शांत रहेगा ना तो ही सोच सकता है वो। इसलिए कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा ना तो इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लेना, सो जाना घर में जाकर गोली खाकर, और जब नींद से उठोगे तो वापस सोचना उसके बारे में। अगर लगता है वैसे ही करना है तो फिर करना। लेकिन अक्सर हम जब गुस्से में सोचते हैं वो नींद से उठने के बाद में वैसा लगता है, ठीक नहीं है, दिस इज नॉट वर्क, हम लोग चेंज करते अपना माइंड। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन है ना, बहुत सारे दुख में या बहुत सारे क्रोध में या बहुत सारे निगेटिव भावना के अंदर मत लेना। अपने आप को समय देना, लंबी सांस लेना, सो जाना। हमेशा कहते हैं टेक डीप ब्रेथ, विचार बदलते हैं जैसे ही हम लोग लंबी सांस लेते हैं। तो ये क्यों बताया इंद्र, अभी तक आग बबूला हो रहा है वहां पर, और ये बदल बोल रहे हैं कि अरे पानी खत्म हो गया। अरे व्हाट, तुम्हारा पानी खत्म हो गया तभी वहां पर कुछ टस से मस नहीं हुआ? इट्स लाइक सरप्राइजिंग ना कि समर तक बादल से पूरी जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। क्या कहते हो तुम कि तुम्हारा पानी समाप्त करके आए फिर भी वहां का टस एक पत्ता भी पेड़ से गिरा नहीं? सब लोग आनंद ले रहे हैं, आनंद मना रहे हैं उसके अंदर, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। कब बंद होगा, कब बंद होगा मैया, कब लोग रोटी मिलेगी, कब मक्खन मिलेगा, मैया भूख लग रही है, मैया कहाँ आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उधर। सब लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसा खबर मिली उनको तो और दुखी हो गए। उन्होंने एक सुंदर बात बताई, सब ध्यान रखना उसके ऊपर। उन्होंने बताई कि पता नहीं हमने पुराने जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, कौन सा हमारा संचित था ऐसा कि हमने कृष्ण को गिरिराज धारण करके खड़े हुए देखा 7 दिन तक। ये हमारा परम भाग्य है, और उनको हम वर्षा तो कर रहे थे लेकिन उनको दर्शन करते हुए इतना दिव्य आनंद की अनुभूति हमको हो रही थी। लेकिन ये बात कानों पर पड़ी लेकिन दिमाग में घुसी नहीं उसके। वो कह रहे हैं उनके ये उनका ये रियलाइजेशन है समर्थक बादलों का। वो दुखी थे मालिक के सामने कि हमारी आज्ञा पूरी नहीं हुई, लेकिन बहुत आनंद में थे वो। उनको लगा कि देखो ये दर्शन जो था ना, जिसको शिव जी देखने आए, बताया ना कल मैं आपको, शिव जी आए थे देखने के लिए। पूरा सीन बोला बिगिनिंग में लॉस लूज नहीं करना है, एंड भी लूज नहीं करना है, पूरा पहले आके बैठ गए और सब कुछ देखा उन्होंने, पूरा दर्शन लिया। तो ये दर्शन जो था ना, भरी घनी वर्षा में इतना बड़ा पहाड़ उठाए खड़े हैं बालक, उसके अंदर सभी लोग खड़े हैं और प्रेम का अनुभव ले रहे हैं, बस मुरली बज रही है, हमारा बड़ा भाग्य था। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कुछ भी। और भी एक बात है, जब कल्याण की बात आती है ना, आपका दिमाग शांत रहेगा ना तो ये आपको समझ में आएगा। कल्याण की बात हो रही है और आपका दिमाग सटका हुआ है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो बह जाता है ऊपर से। ऐसे सत्संग में जाते हो ना तो क्रोध में मत जाना, ऐसे मत जाना, शांत करके मन को जाना। तो इंद्र गया और इंद्र ने वज्र का आघात किया, बोला अभी मेरा लास्ट वेपन जो है ना, अभी समर्थक बादलों से कुछ नहीं हुआ, ये लो मेरा परम श्रेष्ठ जो शस्त्र है ना, अस्त्र, तो किसी को सबके ऊपर श्रेष्ठ अस्त्र है वो फेंका उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। जब उसका वज्र निष्प्रभ हो गया ना, तब इंद्र को ध्यान में आया कि मेरा वस्त्र जो अस्त्र है वो निष्प्रभ करने का शक्ति केवल भगवान के पास है। तो क्या ये बालक भगवान है? भगवान हो सकता है, और कौन हो सकता है? तब उसको अनुभूति हुई, तब वो इतना शर्मिंदा हो गया ना, इतना शर्मिंदा हो गया, तुरंत नीचे आया वो जमीन के लेवल पे, और भगवान ऐसे देख रहे थे अपने प्रेम से, अपने ऐसा खड़े ना, कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, अपने लोगों को प्रेम से देख रहे हैं, मतलब उनके नजरों में ही सबकी शक्ति मिल रही ना उनको, उनके प्रेम भरी नजरों से ही सबको आनंद, प्रेम, अनुभूतियां, और क्या कहें आपको, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सब अमृत की वर्षा नेत्रों से हो रही थी। तो ऐसे निहार रहे, सबको निहार रहे थे वो। तो इस बीच में वो जिस जगह निहार रहे थे उस जगह आ गए वो ऐसे सामने, तो जो मैं आपको देख रहा हूँ, तो वहां से आया वो, तो जैसे ही वहां से आया तो मैंने यहाँ देखा शुरू किया, भगवान ने इधर देखना शुरू किया, ऐसे ही प्रेम से ऐसे टर्न कर दिया आपका। फिर वो उधर आ गया हाथी पर बैठ कर, तो जैसे ही उधर आया मैं आपको देख रहा हूँ, भगवान ने ऐसे पूरा इधर देख लिया। तो उसको समझ में आया कि भगवान नाराज है, ये देखना भी नहीं चाहते, हु आर यू। तो फिर वो समझ गया कि अभी मैंने बहुत बड़ा एक, तो समझ गया कि ये भगवान है, और मैंने ऊपर से इतना भयंकर अपराध किया, उनके प्रेमी भक्तों को पूरा नष्ट करने का प्रयास किया मैंने, कैसा मेरा मतलब क्या मेरा दिमाग में हो गया था, एक पूजा नहीं की तो इतना बड़ा गुस्सा आ गया, ऐसा खुद को ही बोल रहा है वो भी, क्या हुआ कैसे सब कुछ ये, अरे मेरी पूजा बंद की तब से मेरा दिमाग आउट हो गया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भगवान है अभी भी समझ में आ रहा है, तो उसके पहले अभी मैं रिवाइंड नहीं कर सकता उसको जो भी हुआ है, सात दिन बीत गए ऑलरेडी, घनघोर वर्षा, आतंक सब हो चुका है। अभी मैं उसको, उस क्षति को मैं दोबारा वापस नहीं कर सकता, समय को सात दिन पीछे नहीं कर सकता। तृतीया के दिन अभी दशमी आ गई है, नवमी खत्म हो गई, तो ना बहुत डर गया। पहले आपको एहसास नहीं होता ना गलती किया, बाद में जब एहसास होता है ना तो फिर बाद में हालत खराब हो जाती है। तुरंत भाग गया अपने गुरु जी के पास, बृहस्पति के पास स्वर्ग लोक में गया और बृहस्पति ने उनको बहुत डांटा। तो सिंपल आदमी नहीं, वो देवताओं का राजा है वो, लेकिन बोले यू आर यूजलेस पर्सन, आप मूर्ख व्यक्ति हो, एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हो, काम ही आपने ऐसा किया हुआ। और वो सुन रहे हैं, प्राइवेट में हो रहा है, पब्लिक में नहीं हो रहा है कभी। झाड़ने का काम प्राइवेट में हो रहा है। भले तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम्हारा ऐसा मूर्ख और क्या कहते हैं उसको, दुर्भाग्य व्यक्ति कोई नहीं है। तो इतने बड़े पद पर होने पर भी तुमको इतनी अक्कल नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई तुम्हारे लिए उपाय नहीं है, चले जाओ यहां से। मेरे ख्याल से पहले ब्रह्मा के पास गए, वहां पर भी डांट खाई जोरदार, फिर गुरु के पास आए, गुरु ने भी डांट दिया बहुत जोरदार। बोला ठीक है सब कुछ महाराज जी, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, अभी क्या करूँ बताइए, मुझे निकालिए, मैंने अभी गलती कर दिया है, मैं पापी हूँ, मूर्ख हूँ, अकलमंद हूँ, सब कुछ हूँ मैं, अभी मुझे निकालने का उपाय करो, गाली कितना देते रहेंगे। बोले ठीक है, मेरे पास तो पूरा 100% श्योर उपाय नहीं है, लेकिन एक मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे लिए, ट्राई कर सकते तुम्हारे लिए, चलो मैं किसी भक्त को पकड़ो और उसके चरणों में लीन हो जाओ और उसको विनती करो कि मुझे जरा भगवान के पास जाके माफी करवा मेरी, ये एक लगता है उपाय, ठीक है। तो वहां से इंद्र उतर के आए नीचे और सुरभि गाय को मिले। अभी समझो आप सुरभि गाय होते, आपका बच्चा बह रहा था, आपके गौशाला जिसमें आप रहते हो वो भी बह रहा था, आप तो मरने वाले थे ठंड से और इस तूफान से आंधी से, आप भी त्राही त्राही माम कर रहे हो, ये आपकी हालत किसने की? इंद्र ने की। अभी वही इंद्र आपके पास आ रहा है, बोल रहे मैया सॉरी कुछ करो मेरे लिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको बताओ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो ना, भाग जाओ यहाँ से बेशरम कहीं के। हाँ क्या क्या बोलेंगे अभी, हाँ बोलना अच्छा नहीं, क्या समझते हो अपने आपको, हम अकेले को नहीं सबको बर्बाद करने निकले थे, सात दिन तक तुम्हारा दिमाग नहीं ठंडा हुआ, इतना विध्वंस करने निकले थे, आप आए हो पूछने के लिए, चले जाओ यहाँ से, ऐसे हम लोग बोलेंगे। लेकिन सुरभि ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तुरंत उसको स्वीकार किया। क्या कारण है इसका बताओ, नेचुरली अगर वो बोलती ना तो कोई भागवत बोलता नहीं कि सुरभि बहुत दुष्ट थी, हाँ सुरभि बहुत दुष्ट थी, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, नोडल से बोला बराबर है, तुम्हारे जान पर बीती है तुम बोलोगे ना, तुम जिस पर बीती है उसको पता है क्या बीती है। लेकिन उन्होंने नहीं बोला ऐसे, तुरंत इंद्र को शरण में स्वीकार कर लिया, बताओ क्यों। हाँ हाँ, तो इतनी फॉरगिवनेस, इतनी क्षमाशीलता कहाँ से आई, क्रोध आना चाहिए ना, स्थिति तो ऐसी है, तो वही अभी सामने आया हुआ है, अभी तो मौका है तुम्हारा डांटने का, उसको गाली देने का, तो वहां से क्षमाशीलता कैसे आ गई। और एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कंस ने 6 बच्चे मारे द्रौपदी देवकी के, है ना, ऐसे ना जेल में ऐसे दाग थे 6, ऐसे इधर खून का फूटा हुआ, इधर खून का फूटा हुआ, उसके बाद रोज दिखती थी वो, ये कीर्तिमान था, ये इसका, ये उसका, कितना कष्ट हो गया होगा उसको, कितने साल तक देखती थी वो खून के धब्बे, तो साफ नहीं किया गया, पेंटिंग नहीं किया उसके ऊपर, वैसा ही था वो। लेकिन कंस जब आया तो चरणों में गिरा, दीदी दीदी मैया दीदी माफ करो माफ करो, तुरंत माफ कर दिया। अगर आप देवकी की जगह होते क्या बोलते, है चले जाओ यहाँ से, एक लात मारते मुंह पे उसके, अच्छा मौका है अभी 6 बच्चों को मारा, अभी कभी लात तो मार सकती हूँ। लेकिन तुरंत माफ कर दिया, क्यों बताओ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रेम भाव कैसे आया, इतना दुख होना चाहिए आपको, राग गुस्सा आना चाहिए, उसमें प्रेम भाव कैसे पैदा हो गया उसमें। हाँ आपका उत्तर बहुत तरह सही है, मैं ये आप लोगों को बार बार प्रश्न को पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कथा में सहज बोल दिया ना, आप लोगों को कभी भी याद नहीं रहेगा वो, कारण क्या है, 2-4 प्रश्न पूछे आपने दिमाग को खुजाया तो आपको याद आएगा, हाँ इसका उत्तर ये था, उसका उत्तर ये था कि भगवान के 7 दिन दर्शन करके सारे दुख उनके मिट गए थे, यहाँ तक कि दुख की स्मृति भी मिट गई थी उनकी, मतलब कभी कभी कैसा होता ना, आनंद बहुत होता है लेकिन दुख की याद रहती कि तुमने मुझे ऐसे किया था, सब आनंद है, कुशल मंगल सब कुछ है, लेकिन वो इधर मेमोरी में रहता है, डीएनए आ रही नहीं, वो भी मिट गया था। और देवकी का क्या हुआ था, इतने दुख में भय में थी वो, इतने संकट में थी, लेकिन कृष्ण का दर्शन किया। इतना दर्शन भगवान का आनंद ही होता है ना, सारे दुख खत्म हो जाते हैं भगवान का दर्शन करते ही। तो वो इतना ओवरवेलमिंग भावातिरेक वाला आनंद का अनुभव किया था कृष्ण का, उपस्थिति का, निर्भय हो गए थे वो, सारे दुख भय जो बदले की भावना जो भी आपको होना चाहिए वो सब भी नष्ट हो चुका था। इसलिए देवकी तुरंत माफ कर सकी और सुरभि भी तुरंत माफ कर सकी, क्योंकि उसने भी 7 दिन तक आतंक सहने के बाद में कृष्ण का दर्शन, अनमनोर दर्शन किया था। तो आतंक में जो कष्ट हुआ था, देखो मैंने वो दिन भी बताया था कि आपके जीवन में इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि दुख एकदम इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए उसके सामने। दुख इतना बार होगा तो आनंद इतना होना चाहिए आप भक्ति का कि वो दुख भी इतना दिखना चाहिए। तो भगवान ने इतना आनंद दिया दर्शन का कि वो जो आतंक हुआ था ना जानलेवा आतंक, वो भी भूल गए सब लोग। इट बिकेम इनसिग्निफिकेंट, इतना आनंद दिया उनको, इतना डुबाया आनंद के सागर में उन्होंने। तो शुरू भी कोई निगेटिव बात बोली नहीं उसने, 2 लाइन भी नहीं बोली, अभी आयो इतना कष्ट देने के बाद, ऐसा भी नहीं बोली, तुरंत स्वीकार किया। और इसलिए वो जगह जो है ना जहां पर सुरभि को मिले इंद्र जी, उधर सुरभि के सामने पश्चाताप किया उसने, तो पश्चाताप की जगह है सुरभि कुंड, वहां पर आज भी कहते हैं कि हम भी जाकर पश्चाताप करेंगे तो हमारे अपराधों की माफी हो जाएगी। मतलब नाटक का पश्चाताप नहीं, सॉरी, बच्चे कैसे होते हैं, जा उसको सॉरी बोल, क्या उसका तो नहीं रबर छीन के लाया ना, तो उसको जाने का इच्छा नहीं है, लेकिन मम्मी बोल रही है डंडा लेके जाके फरार के बोला सॉरी। मतलब सबको पता है कि सॉरी नहीं बोलना है उसको, उसका भाव ही ऐसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है, लेकिन हृदय से जब पश्चाताप करता है ना व्यक्ति, तो उधर माफी हो जाती है कितना भी अपराध किया होगा। और फिर वो सुरभि लेकर भगवान के पास गई है, भगवान ऐसे इंस्पेक्शन कर रहे थे कितना हानि हुआ नहीं हुआ कुछ भी देख रहे थे। कुछ दिन के बाद में मेरे ख्याल से इमीडिएटली आफ्टर दैट, तब जाकर भगवान ने पहली बार इंद्र को देखा, तब तक वो देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। जब सुरभि ने सिफारिश की तब देखा, तब तक तो देखने का मूड भी नहीं थे इनको। इसका मतलब क्या है, जब तक भक्त सिफारिश नहीं करता है ना, तब तक हमारे लिए कोई स्कोप नहीं जिंदगी में। हम लोग कितने भी बड़े होंगे, हम लोग खुद महान भक्त होंगे समझो, लेकिन अगर हमने कोई अपराध किया है तो बिना दूसरे भक्त के सहारा लिए हमें माफी नहीं मिलती है। हम कितने भी महान भक्त होंगे, अपनी महानता के कोई मतलब नहीं, जब अपराध करते ना तो तुम्हारे महानता का कोई मतलब नहीं होता है। अपराध ऐसी चीज है आपकी सब महानता नष्ट कर देता है, वो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इज फिनिश्ड। दोबारा अगर प्रस्तुत करना है उसको तो एक भक्त का सहारा लेना होगा, और भक्त वो छोटा भी होगा तो चलेगा, भक्त होना चाहिए। वैसे नहीं बोलेंगे नहीं 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 इनके पास नहीं जाओगे तो जूनियर डिवोटी है, मैं तो मेरा इक्वल डिवोटी के पास जाऊंगा, मेरे को इसमें संकोच होता है सर, मतलब माफी मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए और इन विनती करने के लिए नहीं, उस समय जो अवेलेबल है उसके शरण लेकर माफी मांगनी चाहिए। तभी भगवान सोचते हैं कि इसको माफ करूं, मैं तो कोई भगवान के मन में विचार नहीं आता इसको माफ किया जाए। भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है, कितना भी आप बड़ी भक्ति करोगे, बड़े 10 मंदिर बनाओगे, कुछ भी करोगे, आपके लिए बहुत बड़ा होगा, शायद 50 साल लगाए होगे आपने, लेकिन भगवान के साम्राज्य के सामने सब तुच्छ है, एवरीथिंग इज यूजलेस। और उसमें वो बड़प्पन की भावना में अहंकार में कुछ अपराध करेंगे तो फिनिश्ड है, हम सब लोग खत्म हो जाएंगे पूरे। तो फिर भगवान ने इंद्र को डांटा भी थोड़ा सा, थोड़ा चेतावनी भी दिया उसको, तंबी दिया, तंबी, और फिर उसको बोला दोबारा नहीं करना ऐसे कभी। फिर इंद्र ने उधर बहुत श्लोक कहे हैं गौरव के, और वो मतलब पश्चाताप, पहले पश्चाताप, फिर सॉरी, फिर गौरव, फिर ऐसा एक पद्धति होती है अपराध करने के बाद प्रार्थना करने की, वो सारी उन्होंने अपनाई। तो एक शास्त्र है बृहद भागवतामृत, उसमें ना भगवान ने लिखा है, मैं जाता हूँ वैकुंठ छोड़ के मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए, गोपियों के साथ नाचने के लिए, उनके घर में मक्खन खाने के लिए, लेकिन बीच में ये लोग आ जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, और गड़बड़ करते हैं तो उसके बाद में फिर पश्चाताप करते हैं, फिर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, और बहुत समय तक आते रहते हैं प्रार्थना, और मैं सोचता था, सोचता हूँ कि कब खत्म होगी इसकी प्रार्थना, कब खेलने जाऊंगा। कैसे साफ साफ लिखा है भगवान ने, ब्रह्मा के विषय में लिखा है, इंद्र के विषय में लिखा है। एक तो बड़े बड़े पोजिशन पे है, उधर भी बैठ के गलती करते हैं, उसके बाद में समझते हैं, उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में गाते रहते हैं, इतना टाइम पास करते हैं। देखो, एक तो लीला में व्यवधान, उसके बाद में पश्चाताप का व्यवधान, हर चीज को टाइम लगता है ना, हर चीज को, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू फील रिपेंटेंट, टेक्स टाइम टू फील ओ इट्स अ ऑफेंस, दैट टेक्स टाइम, देन टू फील रिपेंटेंट इट टेक्स टाइम, देन टू ऑफर प्रेयर्स इट टेक्स टाइम, एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू ऑफर प्रेयर आल्सो इट टेक्स टाइम। करूँ कि नहीं करूँ, दिल पर इतना अहंकार में पड़ा हुआ है थोड़ा, इतना मेरा सारा समय जो है ना लीलाओं का मेरा, जो मैं लीला कर सकता हूँ मेरे ग्वाल बालों के साथ, उसमें लोग आकर के व्यवधान डालते हैं और मैं वेट करते रहता हूँ कब बंद करेगा, क्योंकि अभी बोल रहा है बेचारा तो निकल जाना भी अच्छा नहीं है। बोल दे भाई, तू जो बोलना है बोल दे, तेरा दिल भी खाली कर दे एक बार। ऐसे भगवान का भाव है, देखो भगवान को ना कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी प्रार्थनाओं को सुनना बुनना, बिल्कुल इनके टाइम पास है कभी, लेकिन फिर भी भगवान दयालु हैं, सुनते हैं तो फिर खेलने जाते हैं। तब तक कॉल वाल अपना कुछ करते रहते हैं और ये खड़े हैं ऐसे, वो कैसे झंडा लगे ऐसे, बोल भाई बोल, कितना बोलना है बोल। ऐसे ऐसे खड़े रहते ऐसे, ओके डन बाय सी यू, फिर खेलने जाते हैं, फिर जाते हो। फिर इंद्र ने क्या सोचा, अभी सब कुछ हो गया, माफी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर और क्या करते हैं, अरे कुछ इनको रिझाने के लिए कुछ किया जाए, मतलब और टाइम पास। तो इंद्र कहते हैं, भगवान मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके आनंद के लिए मैं आपका अभिषेक करूं, तो कर ले भाई, क्या अभी ये भी इच्छा पूरी कर ले तेरी। तो फिर वो ऐरावत को भेजा उन्होंने, हाँ ऐरावत जाके पांच सुंड से आकाश गंगा से पानी लेके आया और ऐरावत कुंड बनाया, वहां पानी जमा कर दिया। अप्सराएं आई, उन्होंने अपना पानी लेके आया, वहां अप्सरा कुंड बनाया। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने 108 कुंड बनाए, सब देवताओं ने अपने अपने कुंड बनाए, वहां पर अभिषेक करना है ना। अभी आकाश गंगा का पानी, स्वर्ग में जो बहती है गंगा, वहां का पानी लेके आए। और फिर सुरभि ने अपना दूध, और इंद्र ने ऐसा, इंद्र है ना वो, अभी उसके पास कितना ऐश्वर्य है, तो उन्होंने बोला ए तुम्हारे लोक में जो बेस्ट चीजें सब ले आओ। तो वरुण ने सिंहासन लेके आया अपना, वरुण का सबसे बड़ा फेमस चीज क्या है, उनका एक स्पेशलिटी है, उनके पास सिंहासन जो है वो किसके पास नहीं, रत्न सिंहासन, वो लेके आए। वो वायुदेव छत्री लेके आए, जो उनके पास सबसे फेमस छत्र लेके आए, और अपने अपने धाम से सब लोग बेस्ट बेस्ट चीजें लेके आए, उनकी जड़ी बूटियां, उनके क्या क्या कहने अभी, इतने सब अलंकार, सब चामर झुलाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले, अप्सराए सब लेके आए, पूरा सीन खड़ा कर दिया। बीच में सिंहासन में उनको बिठाया, और सुरभि ने अपने दूध से और ऐरावत ने अपने आकाश गंगा के पानी से इंद्र जी के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में उनका अभिषेक किया, बहुत भव्य अभिषेक किया, बहुत ज्यादा भव्य डिवाइन। मतलब इंद्र को कैसा था, अभी देखो जो गई है ना अपनी इज्जत, थोड़ा सा वापस लाने ही ना, थोड़ा सा रिप्लेस करना है उसको, ठीक करना है, तो बेस्ट से बेस्ट देंगे तो ही अच्छा होगा ना, तो बेस्ट से बेस्ट ऐश्वर्य खड़ा कर दिया भगवान के आनंद के लिए, और सब लोगों ने बेस्ट तरीके से उनका अभिषेक किया। वो जल जो है वो इकट्ठा हुआ और उसका गोविंद कुंड तैयार हो गया। उस समय इंद्र ने ऐलान किया कि आज से आपका गोविंद नाम से जाना जाएगा, जो भू के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी, गवों के स्वामी और इंद्रियों के स्वामी, तीन चीज के स्वामी, गोविंद के रूप में गा विंदती इति गोविंदहा, ऐसे को इंद्र ने कहा। उधर मंदिर भी है दादा गोविंद जी का, गोविंद कुंड के पास। तो फिर उसके बाद वो जो इंद्र थे ना, उसके अंदर हजारों आंखें थी, है ना, उनको भी छाप मिला था पहले, बहुत लंबी कथा है वो। तो वो हजारों आंखें शरीर में, यहाँ पर भी आंखें, इधर भी आंखें, इधर भी आंखें, इधर भी आंखें, सब जगह आंखें आंखें, ऐसा व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, तो कुछ ग्वाल बाल ना छुप छुप के देख रहे थे, क्या हो रहा है, मतलब समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग। अभी बच्चे कैसे आते देखने, गाड़ी आ गई, अरे बस आ गई, अरे सब कलरफुल कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे बैग लेके लोग आ रहे, बोले क्या है देखने को आ गए, ऐसे वो छुप छुप के देख रहे थे कि बड़े बड़े तेज वाले लोग जो है ना अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, इतना बड़ा सिंहासन लगाया है, इतना दूध लेके आया है, अरे तो हाथी आयो पांच सुंड मारो, हमने तो एक कुंवरों देखा था, पांच सुंड मारो हाथी ऐरावत, ऐसे देख छुप छुप के देख रहे, पूरा अभिषेक देखा, गोविंद कुंड का फॉर्मेशन देखा, सब कुछ हो गया और सब चले गए। और बड़े लोग कैसे होते ना, थोड़े ऐसा कि अरे वो थोड़ा चार पांच टिश्यू रहेगा तो कलेक्ट करके जेब में, ऐसा नहीं है, छोड़ के जाते हैं सब, सोने की थाली मिली, जो भी कुछ है अपना बड़ा बड़ा कीमती चीज, कितना ऐश्वर्य है ना, थोड़ी वो उठा के लेके जाएंगे। बड़ा आदमी से उठा के नहीं जा रहे, वो तीन टिश्यू बोर्ड पड़ेगा उसको उठा के ले गया घर पे आगे काम आएंगे, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। तो सारी कीमती चीजें जो मंगाई थी छोड़ के चले गए वहां पर, सब चकार चौन चीजें जो ना वो पार्टी हो गई ऐसा लगता ना अभी सब पड़ी हुई है। तो उसके बाद ये कन्हैया के बाद भाग भाग के गए, कन्हैया कन्हैया तो बड़ो देवता है, सब देवता आपका अभिषेक किए वगैरह सब बोल रहे हैं। फिर बाबा आए, बाबा को जाके बताया, बाबा बाबा देखा हमने, देखा हमने देखा, ऐसा देखा वैसा देखा, सब वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि ग्वाल वालों ने, हमारी भी ऐसी इच्छा है कि आपका भी अभिषेक करना चाहिए, हमारी इच्छा है हमारी तरफ से। तो उन्होंने ना एक पत्थर ऐसा लिया आड़ा, एक पत्थर खड़ा ऐसा, एक आड़ा हो गया सिंहासन, लाला भाई वहां पे बैठ गया। फिर वही थोड़ा दूध लाया, थोड़ा पानी लाया, अभिषेक किया, कोई मोती नहीं और हीरा नहीं कुछ नहीं उसके अंदर और अभिषेक किया, आनंद से अभिषेक किया, एकदम प्रेम से अभिषेक किया। फिर भगवान बृहद भागवतामृत में बताते हैं कि मुझे इंद्र के अभिषेक में इतना आनंद नहीं आया, लेकिन ग्वाल बालों के अभिषेक में बहुत आनंद आया, क्योंकि इंद्र ने ऐश्वर्य के साथ अभिषेक किया, ग्वाल बालों ने प्रेम के साथ अभिषेक किया। भगवान को ऐश्वर्य की कोई भूख नहीं है, ऐश्वर्य तो उनका ही दिया हुआ है भैया, जो भी सिंहासन छतरी वतरी लेके आए ना वहां से, सबको तो भगवान का ही दिया हुआ है, वो ऑफिशियल चीज है, वो ऑफिस की चीज है सब। ऑफिस में चीज किसकी होती है, कंपनी की चीज होती है ना, सब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इंद्र के रूप में उधर की चीजें उठा के लेके आए, घर से उठा के लेके आए, और घर से भी लाए तो भी सब उनका ही दिया हुआ है, क्वार्टर भी उनका दिया हुआ है, महल भी उनका दिया हुआ है, जब तक पोस्ट है तब तक सब कुछ मिल रहा है उनको, तो उसमें क्या बड़ी बात है। ग्वाल बालों का तो सब कुछ दिल से किया उन्होंने, प्रेम से किया, सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव उन्होंने ग्वाल बालों के अभिषेक में प्राप्त किया। सब जगह खबर फैल गई कि गोविंद गोविंद गोविंद, इनका नाम गोविंद हो गया, गोविंद हो गया, सब जगह खबर पहुंचते पहुंचते राधा रानी और गोपियों के पास पहुंच गई। तो गोपियां सोचे, अरे ये तो राजा बन गए कृष्ण, इनका अभिषेक कर दिया गया राजा के रूप में, इंद्र आए थे, इंद्र ने गोविंद नाम रखा, हम भी राधा रानी का अभिषेक करेंगे और हम भी उनको वृंदावन की रानी के रूप में घोषित करेंगे। तो सभी गोपियां जो है ना उनको लेकर आई वृंदावन में इमली तला नाम के जगह पर, और इमली तला नाम जगह पर सिंहासन लगाया पूरा, बड़े ऐश्वर्य के साथ में राधा रानी का यमुना जल से और बहुत द्रव्यों से, अगुरु और मकरंद और केसर जल और सभी सुंदर चंदन का जल, सबसे उनका बहुत सुंदर अभिषेक किया और कहा कि हमारी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, बोले वृंदावनेश्वरी राधा रानी की। इस तरह से इमली तला में राधा रानी का अभिषेक कर उनको वृंदावन शुद्ध राम के द्वारा घोषित किया गया। ऐसा है गोवर्धन का लीला, बोलो गिरिराज गोवर्धन की, बोलो गिरिराज गोवर्धन की।